कान कुन। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने महसूस किया कि आज यहाँ अंधेरा मामूल से कुछ ज़्यादा ही है। मैंने अपना ब्रीफकेस मेज़ पर रखा और आगे बढ़कर खिड़की में लगे हुए पर्दे को ज़रा सा खोल दिया। मैं आज यहाँ मामूल से कुछ पहले ही पहुँच गया हूँ। साउथ वेल्स के इस कस्बाती कॉटेज हॉस्पिटल में मैं यहाँ के मकामी लोगों के लिए हर हफ्ते ये क्लिनिक करता हूँ। खिड़की में से बाहर का मंज़र बहुत खूबसूरत है। हमारा ये कॉटेज हॉस्पिटल एक पहाड़ी पर वाक़े है। क्लिनिक की दीवार के साथ ही लगा हुआ खुशनुमा घास का वसीओ अरीस कता है और इस लॉन का अहाता किए हुए क्यारियों में लगे हुए डेफोडिल्स के खुश रंग और यकसा कामत फूल तरोताजगी और तरतीब का हुस्न लिए हुए। ज़रा दूर निगाह डालिए तो पहाड़ी के नशेब में मुख्तलिफ अकसाम के दरख्त दिखाई देते हैं। चेरी ब्लॉसम, हॉर्स चेस्टनट और पाइन्स की मुख्तलिफ किस्मों के छोटे बड़े दरख्त। ढलान पर लगे हुए इन मुख्तलिफ नौ दरख्तों के बीच बीच में से नज़र आते हुए मकामी आबादी के लोगों के घरों की छतें और इस हस्पताल और मकामी आबादी को मिलाने वाली एक छोटी सी बल खाती हुई सड़क जो सड़क से ज़्यादा पगडंडी मालूम होती है। यह हस्पताल के मेन गेट से तो साफ निकलती दिखाई देती है लेकिन फिर इन मुख्तलिफ़ नौ दरख्तों के दरमियान कुछ ओझल और कुछ वाजे और फिर बिल्कुल ही ओझल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अली, ये कहते हुए पॉलिन ने पहले मरीज़ की फ़ाइल मेरी टेबल पर रखी। पॉलिन मेरी स्टाफ नर्स है जो हर हफ्ते इस क्लिनिक को चलाने में मेरी मदद करती है। मुझे हर हफ्ते यहाँ आना बहुत पसंद है, शायद इसलिए कि एक तो यहाँ मरीज़ों का रश बहुत ज़्यादा नहीं होता और मैं अपने बेस हॉस्पिटल की तेज़ रफ्तार और मशीनी ज़िंदगी से फ़रार होकर यहाँ कुछ वक्त गुजारने में भला महसूस करता हूँ। यहाँ के माहौल और काम की आहिस्तगी अपने अंदर एक खुशगवार सुकून का एहसास रखती है। लेकिन मुझे यहाँ आना इसलिए भी पसंद है कि यहाँ मरीज़ों की तादाद कम होने की वजह से मेरे लिए ये मुमकिन हो जाता है कि मैं हर मरीज़ पर सिर्फ मरीज़ होने की हैसियत से नहीं बल्कि एक फ़र्द होने की हैसियत से तवज्जो दे सकूँ, उसे जान सकूँ, उससे कुछ सीख सकूँ। मैंने फ़ाइल खोली तो जॉन डेविस की बायोप्सी रिपोर्ट मेरे सामने थी। जॉन डेविस से मेरी पहली मुलाकात अपने बेस हॉस्पिटल की मसरूफ़ ज़िंदगी के दौरान हुई थी। वो एक अंदरूनी मरीज़ की हैसियत से हमारे वार्ड के साइड रूम में दाखिल था और जिस शाम मैं अपने मामूल के वार्ड राउंड के दौरान उससे मिला तो उसकी तबीयत बहुत बेहतर हो चुकी थी और वो अगली सुबह का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था जब वो डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर को लौट जाएगा। इस मुख्तसर सी मुलाकात में उसकी बजलसंजी, जिंदा दिली और बच्चों जैसी मुस्कुराहट ने मुझ पर कुछ ऐसा खुशगवार तासर छोड़ा कि जब रात गए मैं अपनी दिन भर की मसरूफियत से फारिग होकर स्टाफ रूम में अपने लिए चाय बना रहा था तो न जाने क्यों मुझे जॉन डेविस का ख्याल आया। मैं अपना मग हाथ में लिए उसके कमरे में पहुँच गया। उसने अपने सरहाने रखे हुए रेडियो को बंद किया और अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसके चेहरे की मासूम मुस्कुराहट और ज़िंदगी के भरपूर तजर्बे ने मेरे सीखने की आरज़ू का हाथ आगे बढ़कर थाम लिया और हम दोनों दोस्त बन गए। इस 82 साला बूढ़े मगर बच्चों जैसी मासूम मुस्कुराहट रखने वाले वेल्श कानकुन की कहानी बहुत दिलचस्प थी। वो एबरगवेनी का रहने वाला था जो साउथ वेल्स का एक खूबसूरत कस्बा है। इस कस्बे की कुदरती दिलकशी दुनिया भर से बहुत से टूरिस्ट को यहाँ हर साल खींच लाती है और यहाँ के बेशतर मकामी लोगों का ज़रिया माश इसी टूरिज्म से वाबस्ता है। जॉन डेविस जब बच्चा था यानी अब से कोई 70-75 बरस पहले तो एबरगवीनी की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी, बल्कि एबरगवीनी ही क्या, बेशतर साउथ वेल्स के छोटे छोटे कस्बों में बसने वाले मकामी लोगों का ज़रिया माश कानकुनी था। ये सारा इलाका सदियों से आला दर्जे के कोयले की कानों की वजह से आलमी शोहरत रखता है और ख़ास तौर पर इस सदी के अवाइल में साउथ वेल्स में ज़्यादातर बसने वाले किसी न किसी तौर कानकुनी के शोबे से मुतालिक थे और यही इनका ज़रिया मुआश था। जॉन डेविस की उम्र 9 बरस की होगी जब उसने पहले पहल कानकुन की हैसियत से काम शुरू किया। ये यूरोप में सनती इनकलाब के आगाज़ का ज़माना था। वो और उसके हम उम्र साथी साउथ वेल्स में पड़ने वाली सख्त सर्दियों के ज़माने में, जब सुबह ही सुबह टोलियों की सूरत में वेलिंगटन बूट्स पहने, हाथ में सैंडविचेस का डब्बा थामे और सर को ऊनी कंटोप से ढांके अपने काम पर रवाना होते, तो मौसम ज़मिस्ता की बेरहम सर्द हवा और चारों तरफ खूब अंधेरा उनके साथ साथ चलता। ये सब बच्चे दूसरे कानकुन मज़दूरों के साथ सुपरवाइज़र के दफ्तर में पहुंचकर हाज़िरी लगाते, कानकुनी का मखसूस लिबास पहनते, आहनी हैट अपने सर पर जमा कर और धात की प्लेट पर कंधा नंबर को अपने बाजुओं पर शनाख्त के लिए बांध लेते और कभी पैदल और कभी नाबीना घोड़ों की मदद से चलने वाली पहिया गाड़ियों में सवार हो जाते और सतह ज़मीन से ज़ेर ज़मीन सफ़र करते हुए, जब कोयले की कानों की तंगोतारीक राहदारियों से होते हुए उस मकाम तक पहुंचते कि जहां ताज़ा खुदाई जारी होती, तो इन सब बच्चों का बचपन दबे पांव रुखसत हो जाता और ज़िंदगी की संगदिल हकीकतें कोयले की एक अनखुदी दीवार की तरह इनके बिल्कुल सामने होती। ये अलग अलग मकामात पर खुदाई करने वाले मज़दूरों को स्पिरिट लैम्प की मदद से रोशनी फराहम करते ताकि ये मज़दूर सतह ज़मीन से सैकड़ों फुट नीचे अपने काम को कारामत तरीके से जारी रख सकें। दिन गुजरने के साथ साथ काम की शिद्दत तेज़ होती तो चलने वाली कुदालों की आवाज़ से कान के दरो दीवार गूंज उठते और कोयले के ज़र्रात की उड़ने वाली धूल स्पिरिट लैम्प की मलगजी रोशनी को मज़ीद धुंधला देती। जॉन डेविस और उसके हमजोली इंसानी तारीख के एक अलमिया बाप का किरदार बने अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते, इस बात से बेनियाज के ऐन इसी लम्हे और ऐन इसी जगह चंद सौ फुट ऊपर एबरगवीनी की हसीन वादी में चंद ही लम्हे पहले बारिश तमाम हुई है और गहरे बादलों को चीर कर निकलने वाली धूप ने हद नज़र तक फैले हुए सब्ज़ार पर बिखरे हुए बारिश के मोतियों को छिलमिला दिया है और वादी के तवील कामत दरख्तों पर नवारद सब्ज पत्ते चमकती धूप और वादी में चलने वाली नर्म हवा की लर्जिश से आतिशबार हो गए हैं। लंच के वक्फे की सीटी बजती तो वो काम रोक कर और ज़मीन पर बैठकर कोयले के धुंधले गुबार के छट जाने का इंतज़ार करते और फिर माँ के हाथ के बनाए हुए सैंडविचेस और साथ लाए हुए ऑरेंज जूस में न जाने कैसा जादू था कि इन सब बच्चों के इस अंधोनाक लम्हे मौजूद से बचता बचाता। चंद लम्हों के लिए इनका बचपन दबे पांव फिर से लौट आता। आपस की खुशगप्पियां और खिलखिलाहट कोयले की कान के अंधेरे को किसी स्कूल के क्लासरूम की रोशनी बनकर धकेलने लगती। वक्फा ख़त्म होता तो काम का दोबारा आगाज़ होता। इन सब बच्चों का काम मजमूई तौर पर इसी कदर अहम और मुश्किल था जितना कि कान की खुदाई करने वाले जफाकश मज़दूरों का, क्योंकि इन बच्चों की मदद के बग़ैर इन तंगोतारीक राहदारियों में रोशनी का गुज़र मुमकिन ही नहीं था और दूसरे इनकी ज़रा सी गफलत कोयले की इस कान में तबाहकुन आग लगा सकती थी। ये अपने छोटे कद और नन्हे मुन्ने वजूद की वजह से ऐसी छोटी छोटी गुफाओं में भी जा सकते थे जहां मजबूत और तवील कामत वेल्श मज़दूरों के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल था। अगरचे बाकायदा खुदाई करना और बाकायदा बोझ उठाना तो इन बच्चों के कामों में शामिल नहीं था, लेकिन कभी कभार कान की बहुत निचली और तंगोतारीक राहदारियों से उन्हें बोझ उठाकर इधर से उधर जाना भी पड़ता। काम के इस कदर मुश्किल और सख्त होने के बावजूद महज बच्चा होने की वजह से कान के मज़दूरों के मुकाबले में इनकी आमदनी सिर्फ एक तिहाई होती थी, यानी एक पूरे हफ्ते की मज़दूरी सिर्फ 35 पेंस।